युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है। अब भगवान संसार में रहकर संसार से पार के अनुभव कृपा शांति आपनोति नैष्ठिकम् युक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। बड़ा सरल सहज और व्यवहार में काम लेने जैसा श्लोक है। इस श्लोक से तो ऐसा लगता है कि बड़ा आसान और बड़ा सहज जीवन जीने की कला मिलती है। साधु बनकर तपस्वी होकर हो सन्यासी होकर परमात्मा को पाना तो जरा जन साधारण के लिए कठिन है, लेकिन ये श्लोक तो ऐसा है कि तुम जहाँ हो जैसे हो तुम्हारे पास जो भी है, चाहे ज्यादा धन है चाहे कम धन है, ज्यादा पढ़ाई है कम पढ़ाई है, ज्यादा विस्तार है चाहे कम विस्तार है, तुम जहाँ हो वहीं से ईश्वर प्राप्ति तुम्हारे लिए सुगम हो सकती है। बड़ा सहज में है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मात्नोति नैष्ठिकम्। योगी शांति पाते हैं एकांत गुफा में, लेकिन उस एकांत गुफा की शांति में भी कृष्ण राजी नहीं हो रहे। कृष्ण कहते नैष्ठिकम शांति, युद्ध चल रहा हो, मार काट हाथी घोड़े चीखते हो, हाथी चिंखारते हो, घोड़े हुंकारते हो, मल और योधे तरह मूछेंटते और तलवार और भालों की नोक सजाते हो, उस समय भी तुम शांत रह सको, उस समय भी तुम्हारे जीवन की दिशा सही हो सके, उस समय भी तुम्हारी बंसी बज सके, भीतर के गीत गूंज सके। युद्ध के मैदान में कृष्ण जैसे निश्चिंत है, ऐसे संसार के इस राग द्वेष के काम क्रोध के मेरे तेरे के चाहो और से अशांत युग में भी तुम्हारे दिल की बंसी बजती रहे, ऐसा दिल भर कृष्ण तुम्हें समझाना चाहते। मंदिर में जाकर पूजा करना ठीक है, लेकिन तुम जहाँ खड़े हो वहीं मंदिर खड़ा हो जाए, ये कृष्ण कला बता रहे। यज्ञ की वेदी पर धर्म संपन्न करना ये अच्छा है सुंदर है, लेकिन तुम जो कुछ कर्म करो वो यज्ञ हो जाए, ये इशारा कृष्ण दे सकते हैं। तुम गिरी गुफा में जाकर समाधि करो और योग सामर्थ्य और योग सिद्धि पाओ, ये अच्छा है सुंदर है, लेकिन जो तुम करते हो वही योग सिद्धि का मोक्ष द्वार खोल दे, ये कृष्ण का संकेत है। तुम पुरुषों को खोजकर गिरी गुफाओं में महापुरुषों के चरणों में बारह बारह वर्ष झाड़ू बुहारी करके अंतःकरण शुद्ध करो, फिर तत्ववेता महापुरुष को खोजो और तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं पीते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी को खोजकर आत्मज्ञान पाकर मुक्त हो जाओ, ये तो अच्छा है, लेकिन तुम जहाँ हो वही मुक्ति के गीत गूंजने लगे, ये प्रश्न बता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकम्। ध्यान द्वारा जो शांति है वो कईयों को नाम जप करते हैं ज्योति निरंजन ओमकार रारंकार अथवा भूर्भुवस्व अथवा और कोई अथोड़ा वातावरण अनुकूल होता है तो शांति आती है, लेकिन बच्चा जरा मैं चैन पुकार देता है शांति चली जाती। कभी कभी ध्यान भजन करते वातावरण शुद्ध होता है, सुबह की सुंदर मधुर हवाएं होती है, कुछ प्राणायाम आदि किए मन और प्राण स्वच्छ हुए, थोड़ी शांति मिली, लेकिन ये शांति एक दिन मिली दूसरे दिन उतनी की उतनी मिले ये जरूरी नहीं, दूसरे दिन गड़बड़ भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी मिल सकती है, और तीसरे दिन फिर शांति ठन ठन पाल हो जाती है। वो नैष्टिकम शांति नहीं है, वो साधन के अधीन शांति है, योग के अधीन शांति भोगी की अपेक्षा हजार हजार गुना अच्छी है। लेकिन प्रश्न तो एक ऐसा योग बताते हैं कि भोगी और योगी को जो सुख है उससे भी ऊंचा योग ऊंचा भोग ऐसा है कि तुम संसार का भोग भी भोगते रहो, काम धंधा आदि भी करते रहो और लेन देन का ठीक से व्यवहार भी करते रहो, फिर भी तुम्हारे अंतःकरण में ऐसी नैष्टिक शांति हो कि उठत बैठत कोई उठाने, तत कबीर हम उसी ठिकाने। एक फकीर ने कहा कि नजरें बदली तो निजारे बदल गए। नजर बदलने को कृष्ण कह रहे, नजरें बदली तो निजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। तुम्हारे अंदर सचमुच में ऐसी अद्भुत चेतना है, तुम्हारे में ऐसी अद्भुत क्षमताएं हैं, तुम्हारे में एक ऐसा अद्भुत स्वत्व है कि एक प्रलय तो क्या, एक युद्ध तो क्या, एक हजार युद्ध तो क्या, महामारियां करोड़ करोड़ हो जाए फिर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होता, ऐसे तुम अमर आत्मा हो। ऐसी तुम्हारी अमरता की शांति पाने को कृष्ण संकेत कर रहे हैं, और वो भी अर्जुन, प्यारे अर्जुन को, शिष्य को गुरु उपदेश दे एकांतरण में अलग बात है, लेकिन कृष्ण तो मित्र भाव से, चल यार दोस्त सुन दे, जिगरी दोस्त ए सखा, अर्जुन को कभी सखा कहते तो कभी अनग कहते हैं। अनग पहले अध्याय में नहीं कहा, दूसरे में नहीं कहा, तीसरे अध्याय में अनग कहा। अनग माना निष्पाप, जो निष्पाप होता है वही तत्व ज्ञान को समझ सकता है, और जो तत्व ज्ञान को समझता है वही निष्पाप कहा जाता है। पहले अध्याय में विषाद है अर्जुन को, इसलिए अनग नहीं है, विषाद है, अग का फल है, मोह का फल है विषाद दुख। दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान सुनकर अर्जुन को जिज्ञासा हुई है, पाप जल गए हैं, निष्पाप हुआ है, इसलिए तीसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को अनग करके पुकारते हैं, अनग माना निष्पाप। हम लोग सत्संग करते उसके पहले हरि नाम का ध्वनि करते हैं, ध्यान करते ताकि हमारा अंतःकरण निष्पाप हो जाए, और निष्पाप हो तो हम अनग हो जाएंगे, जैसे अर्जुन अनग हुआ और कृष्ण की गीता को युद्ध के मैदान में सुनकर उसका साक्षात्कार कर लिया, ऐसे ही इस मैदान में गीता के ज्ञान का साक्षात्कार हो जाए। तो आज का ही श्लोक हमें कहता है कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मात्नोति नैष्टिकम, आयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है। भोजन तो कर्मयोगी भी करता है और कर्म भोगी भी करता है, कपड़े तो कर्मयोगी भी पहनता है और भोगी भी पहनता है। तो कृष्ण बोलते जब खाना है पीना है रहना है जीना है, लेकिन खाना पीना जीना अशांति के लिए दुख के लिए तो करते नहीं, तुम सब सुख के लिए करते, तो आओ मेरे मित्र आओ मेरे भैया, तुमको सुख कहाँ है वो जरा गुफा का द्वार दिखा दे। तुम कर्म करो लेकिन कर्म में योग को मिला दो तो कर्म तुम्हारे सुंदर होंगे। कर्म में जब फल की लोलुपता मिला देता है आदमी, तो क्या होता है कि कर्म करने की जो योग्यता है, उत्साह है, आनंद है, क्षमता है, वो कुंठित हो जाती। फल में जब कर्म में जब फल की आसक्ति होती है तो फल की चिंता भी होती है, और फल मिलेगा कैसा मिलेगा कब मिलेगा उसकी विवलता होती है, इसलिए कर्म इतना सुसज्ज नहीं होता है। और कर्म में जब फल की आसक्ति हट जाती है तो कर्म करने का अपना रस आता है, मजा आता है। रामतीर्थ बोलते थे मूर्ख लोग कर्म की फल के इंतजारी में मर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कर्म करते समय जो आनंद रूपी फल प्रकट होता है वो मिलने वाले फल से भी ऊंचा है, और मिलने वाले फल तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। जब पाप कर्म का फल हम नहीं चाहते तभी भी सजा तो मिलती है, तो पुण्य का फल तुम न चाहो तभी भी मजा मिलती मिलती और यार मिलती है। फिर नाहक क्यों अपनी बेइज्जती करना। मैंने सुनी है भागवतार की कथा कि राजा मंदिर में जा रहे थे, तो दोनों किनारे मालन फूलों की माला लेकर खड़ी थी। दोनों ने राजा साहब को पुष्पों की माला दी। राजा साहब मंदिर में भगवान को चढ़ाकर हार जब लौटे, पूछा कितने पैसे, तो एक ने चार आने मांगे। वो हार तो दो आने का था, लेकिन राजा साहब चवनी उनके लिए कोई भारी नहीं पड़ेगी, चार आने राजा ने दे डाले। दूसरे से पूछा तो उस मालन ने कहा कि आप तो हमारे माई बाप हैं, आपसे हम पैसे कैसे लें? ये हार जिस जमीन से आए वो जमीन के आप महीपति हैं, ये आप ही का है, हम भी आप ही के हैं। राजा ने उस वक्त कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मीठी मुस्कान दी और दरबार में जाकर मंत्री को कहा कि वो मालन कहाँ रहती है, क्या करती है, उसके नाम थोड़ी जमीन जागीर और कर दो, बड़ी सज्जन मालिन। उसने तो चवन्नी में हार बेचा, लेकिन इस मालन को तो बेमाप मिला। ऐसे ही तुम चवन्नी में जिंदगी मत बेचो, राजाओं का राजा जो परमात्मा है वो तुम्हें बेमाप दे सकता है भैया। ये शुक्र कर कि वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते, कोई अतिथि आ जाए तो उसको आदर सत्कार से अन्न वस्त्र भोजन आदि की व्यवस्था करके तुम उसके हृदय को संतुष्ट करते हो। अतिथि 5-25 का ले गया, लेकिन उसके हृदय में जो हृदयेश्वर बैठा है वो न जाने तुमको किसके द्वारा क्या दे दे, उसका हिसाब लगाना मेरे वश की बात नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने संतों के पास जाकर थोड़ा सा मार्गदर्शन लिया, उनको शांति मिली या थोड़ा लाभ हुआ। संतों का तो 5 मिनट गया, लेकिन उनको जो लाभ हुआ वो जिंदगी भर संतों के गीत गाते रहे और अपना पूरा जीवन संतों की सेवा में लगाकर धन्यभागी हो गए। नहीं तो 5 मिनट की फीस संत लेते तो क्या 5 रुपए होते, 2 रुपए होते और क्या होता, 25 रुपए होते। वकीलों के लिए हमारे हृदय में इतना आदर नहीं होता है और फी लेने वाले डॉक्टरों के लिए हमारे हृदय में इतना आदर नहीं होता जितना किसी महापुरुष ने निष्काम भाव से कोई प्रयोग बता दिया, कोई जरा मंत्र बता दिया, कोई औषधि बता दी या जरा आशीर्वाद कर दिया। उनके लिए निष्काम कर्म करते हैं उन महापुरुषों के लिए हमारे हृदय में जो जगह होती है वो जगह न वकील भर सकता है, न डॉक्टर भर सकता है, न सिपाही भर सकता है, न सेठ भर सकता है, कभी कभी तो माँ भी नहीं भर सकती और बाप भी नहीं भर सकता, ऐसा वो बापजी हृदय की जगह में रहता है। और बापजी क्यों होते हैं? बापजी होते इस बापजी की बात पर अमल करने से। बापजी का बापजी कन्हैया है, उसकी बात पर जो अमल करते वो बापजी हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। आज का श्लोक तुम्हें बापजी बनाने की कोशिश करेगा। जयराम जी बोल दो। और ये जरूरी नहीं कि लोग तुम्हें बापजी कहें, ऐसे तो लोग तो भिखारी को भी कहते कि बापजी माफ करो जाओ। ऐसा बापजी नहीं जो सचमुच में बापजी है, ऐसा हृदय तुम्हारा बनाने का कोशिश करेगा आज का श्लोक। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकम्। नैष्ठिक शांति, जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, नैष्ठिक सदाचारी होता है, प्राण जाए बरु वचन न जाए, ऐसे नैष्ठिक शांति, जैसे पतिव्रता स्त्री पति का त्याग किसी अवस्था में नहीं करती, चाहे वो दरिद्र है, चाहे कंगाल है, चाहे सज्जन है, चाहे वो दुर्जन है, लेकिन पतिव्रता स्त्री पति का त्याग नहीं करती, ऐसे ही शांति तुम्हारा त्याग नहीं करती। और विश्व में नैष्ठिक शांति से बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। नैष्ठिक शांति की उपलब्धि के आगे विश्व में और कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। बोले महाराज भगवान मिल जाए, नहीं नहीं उससे भी ऊंची चीज, महाराज श्री कृष्ण मिल जाए, श्री राम मिल जाए, बुद्ध मिल जाए, कुछ मिल जाए, नैष्ठिक शांति कुछ निराली होती। बुद्ध ने आनंद को कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, आखिरी घड़ियां हैं मेरी संसार से विदा होने। ये बात सुनकर आनंद रोने लगा। इन सुभूति के चित्त में कोई शोभ नहीं हुआ। आनंद ने कहा कि पागल, शास्ता जा रहा है सदा सदा के लिए, प्रकाश देने वाले बुद्ध जा रहे हैं सदा सदा के लिए, शांति दाता जा रहा है, तुझे रोना नहीं आता? तब सुभूति ने कहा कि मैंने उनको ऐसा पाया कि वो मेरे से कभी जा नहीं सकते, मैंने उनको ऐसा निकट से देखा है और ऐसा मैं उनमें घुल मिल गया हूं कि वो मेरे को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते, इसलिए मुझे रोना नहीं आता। आनंद चकित हुआ, बुद्ध के पास गया। भंते, मैं 40 साल तुम्हारी हाजिरी में सेवा में रहा और अभी आप विदा होते हो मुझे दुख हो रहा है, अभी भी मुझे दुख और सुख की चोटें लग रही। और वो सुभूति बोलता है कि बुद्ध कभी मेरी ओर से जा नहीं सकते। बुद्ध ने कहा, सुभूति मुझे ठीक से समझा, तूने अभी मेरे को समझाने, तू मेरे निकट नहीं रहा, मेरे शरीर के निकट रहा, मेरे निकट रहता तो तेरा भी रोना धोना बंद हो जाता। उसने नैष्ठिक शांति पाई है लेकिन तूने थोड़ी व्यवहारिक शांति पाई है, अब मैं जा रहा हूं तो मेरा क्या होगा, उस चिंता में तेरी शांति खो गई। लेकिन सुभूति की शांति खो जाए ऐसी शांति नहीं, उसने बिल्कुल मेरे को ठीक से पाया है, ठीक से देखा है, ठीक से समझा है, यूं कहूं तो वो मेरे मैं हो गया है और मैं उस मैं हो गया हूं, मेरा शरीर मिटेगा, मैं नहीं मिटता हूं। ऐसे ही मेरी विदा उसके शरीर से मेरे शरीर की विदा होगी लेकिन उससे मेरी विदा नहीं होगी, नैष्ठिक शांति है। ये नैष्ठिक शांति भगवान तुम्हारे संसार के गुड़ गोबर व्यवहार में रहकर पाने का रास्ता बता रहे। कह देते कि सब छोड़ के जंगल में जाओ, तप करो, समाधि करो, उपदेश वही दिया जाता है जो सामने वाला झेल सके, और कह किया कहा वही जाता है जो सामने वाला कर सके। तुम कर न सको और हम कहें तो ये बेवकूफी, और हम कहें और उसमें कोई सार न हो तो भी बेवकूफी, हम कहें उसमें सार हो और सार ऐसा हो कि तुम कर भी सको और सार भी मिले, तो श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि सामने वाले कर भी सकते हैं और उनमें सारों का सार संसार के पार का परमात्मा अपने हृदय में, जीते जी मरने के बाद नहीं स्वर्ग का सुख, मरने के बाद वैकुंठ की सांत्वना नहीं, जीते जी वैकुंठों का वैकुंठ और स्वर्गों का स्वर्ग आत्मदेव का साक्षात्कार कराने की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। शांति, नैष्ठिक शांति, उस शांति के आगे जगत की कोई उपलब्धि ठहर नहीं सकती, स्वर्ग का सुख उसके सामने सिर ऊंचा नहीं कर सकता, ऐसी वो शांति है। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति मचिरणादि गच्छति, जिस समय वो आत्मदेव का ज्ञान होता है परम शांति होती, नैष्ठिक शांति होती, और उसी समय मुक्ति। ऐसा नहीं कि अभी ज्ञान हुआ अभी शांति मिली और भविष्य में मुक्ति होगी, मरेंगे तब मुक्ति होगी, नहीं, जीते जी मुक्ति। चार प्रकार की मुक्तियां मरने के बाद होती है, वे सामान्य मुक्तियां हैं, लेकिन जो सुपर मुक्ति है, सर्वोपरि मुक्ति है, वो मरने के बाद का इंतजार नहीं करती, वो जीते जी मुक्ति। एक होती है स्वर्गीय मुक्ति, अगर थोड़ा सा विस्तार करें तो पांच प्रकार की मुक्ति मरने के बाद होती है। जैसे यहाँ कर्ज है, चिंता है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, इधर रहते हैं उधर रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छे कर्म है, मर गया आदमी, गया स्वर्ग में शांति, नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो गलबा ने अमथाना लगन, नो प्रॉब्लम, बाप जी ने कृपा थे, कारी देवी ने दया थे, हेरा स्वर्ग में अमथा का। ये स्वर्गीय शांति है। अच्छा, दूसरी चार प्रकार की शांति होती है इष्ट लोक के लोक में जाने से, जैसे भगवान कृष्ण राम नारायण के अवतारों का भजन सुमरण चिंतन करते हैं, अथवा शिव शाक्त आदि जो जिसकी उपासना पूजा करता है, तो मरने के बाद उसके लोक में जाता है। अगर पूजा ठीक ठीक है तो सायुज्य मुक्ति होती है, उससे कुछ बढ़िया है तो सामिप्य मुक्ति होती है, और सालोक्य सायुज्य सामिप्य सारूप्य, चार प्रकार की मुक्ति। जैसे राजा के गांव में रहना, राजा के नगर राज्य में रहना, ये सालोक्य है। राजा का कुछ खास आदमी होकर रहना, जैसे कारकुन आदि या कोई सलाहकार आदि होकर रहना, सालोक्य मुक्ति इष्ट के, जैसे ब्रह्म का चिंतन करते हो ब्रह्म लोक में गए, भगवान नारायण का चिंतन करते हो नारायण लोक में गए, शिव का चिंतन करते शिव लोक में गए, सतलोक में गए, जन लोक में गए, तप लोक में गए, सात ऊपर के लोकों में कहीं भी गए अपने अपने कर्म के अनुसार, तो सालोक्य सामीप्य सायुज्य और सारूप्य, तो सालों के माना उसी लोक में, सामी के माना उनके निकट, सारू के माना उनकी करीब करीब थे, सायुज्य माना जैसे विशेष मंत्री हो, राजा के निकट रहने वाला हो अथवा राजा का छोटा भाई हो, बिल्कुल नजदीक रहते हो। सारूप्य माना उनकी बराबरी जैसा, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने का सामर्थ्य नहीं, बाकी का उपभोग और जीने का ढंग उनके इष्ट के बराबरी की व्यवस्था। जैसे नजीक का आदमी सेठ के साथ ही रहता है, बंगले का, कार का और साधनों का वैसा ही उपयोग करता है जो खास विशेष होता है। इस प्रकार की पांच प्रकार की मुक्तियां तो मरने के बाद होती है, एक स्वर्गीय मुक्ति, दूसरी सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये चार मुक्तियां और पांचवी स्वर्ग की, ये पांचों मुक्तियां मरने के बाद होती है। कृष्ण जो मुक्ति बता रहे हैं उसको कैवल्य मुक्ति बोलते, सुपर मुक्ति। कैवल्य मुक्ति मरने के बाद किसी लोक लोकांतर में अंतवाहक शरीर से जाकर फिर वहाँ भोगयोन भोगमय शरीर पैदा करके, पंच भौतिक से रहित शरीर पैदा करके वहाँ का भोग भोग कर फिर गिरने वाली मुक्ति नहीं बता रहे। लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति, ऐसा कि परम शांति, नैष्ठिकम शांति, फिर वहाँ से पतन नहीं होता। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, न तद भाषते सूर्यो न शशिको न पावक, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ सूरज और चंद्रमा का प्रकाश नहीं, सूरज और चंद्रमा भी जहाँ से, अग्नि भी जहाँ से तेज और प्रकाश लाती है, वो परम प्रकाश स्वरूप जो आत्मदेव है उसका साक्षात्कार नैष्ठिक शांति दिलाता है। उसके साक्षात्कार में जो रुकावटें आती है वो कर्म के फल की लिप्सा है। कर्म के फल की लिप्सा से आदमी की योग्यताएं कुंठित हो जाती है। आज का श्लोक बताता है कि अयुक्त काम कारेण फले सत्तो निबध्यते, जो अयुक्त है, जिसको कर्म करने की युक्ति नहीं है, जिसको कैवल्य मुक्ति पाने की युक्ति नहीं है, वो कर्म के करने में बंध जाता है, और जिसको कर्म करने की युक्ति है वो कैवल्य मुक्ति का अनुभव कर लेता है, कर्म करते हुए भी छूट जाता है। मैंने कई बार एक कहानी सुनाई, कहानी कभी कल्पित भी होती है, कहीं दंत कथा भी होती है, कभी घटित घटना भी होती है। कहानी इसलिए कहता हूँ कि मुझे, मैंने सुनी हुई बात है, शास्त्रों में नहीं, किसी के द्वारा सुनी, कि जंगलों में प्राचीन काल में शिकारी लोग बंदर फंसाते थे, छोटे सकड़े मुंह के बर्तनों में बंदर देखे, जंगल में बंदर देखे उस ढंग से, सकड़े मुंह के बर्तन पहले जमीन में गाड़ देते, फिर बंदर देखे उस ढंग से उनमें अखरोट डाल देते, छुहारे डाल देते, कोफे डाल देते, गुड़ के टुकड़े डाल देते, और फिर शिकारी छुप जाते, बंदर नीचे उतरते और डालते मुंह, चकड़े मुंह के बर्तन में हाथ, हाथ डालते महाराज माल भर लेते, माल भर लेते तो हाथ फिट हो जाता, हाथ फिट हो जाता तो वो दूसरे हाथ से दम पछाड़ करते, पूछ हिलाते, तीन पैर पटकते, लेकिन वो मुट्ठी खोलते नहीं, बाकी का सब करते, यहाँ तक कि पूछ पटक पटक के हर सिर ढूंढ ढूंढ के खूब चीखते, और तो क्या महाराज सिंगल और डबल दोनों कर लेते थे, फिर भी वो मुट्ठी नहीं खोलते थे। होता क्या था कि शिकारी आकर उनके गले में फांसा बांध देता, पत्ता रस्सी, और बाद में उनके हाथ पर जोर से डांग मारता, डंडा, डंडा मारने पर हाथ खुल जाता, हाथ यू ही खाली आ जाता, लेकिन खाली हाथ आने के पहले, मुक्ति होने के पहले गले में फांसा मिलता और पेट भूखा और शरीर थका रह जाता, और जिंदगी भर वो बंदर फिर उठ बैठ करते रहते हैं, बाबू साहब को सलाम भरते रहते हैं। अगर उनमें युक्ति होती तो भले सकड़े मुंह का बर्तन है, एक गुड़ का टुकड़ा उठाया, दो उंगली से खा लिया, तोफा उठाया, माल उठाकर वो सब माल पा सकते थे, तृप्त हो सकते थे और निर्बंध हो सकते थे। ऐसे हमारा मन रूपी बंदर संसार में यूं मुट्ठी बांधता है, और छोड़ना तो जरूर पड़ता है, मौत आकर फांसा डालती है और डांग मारती है शक्ति पर, तो राम बोलो भाई राम झक मार के सब छोड़ के जाना पड़ता है, और संसार का मजा कुछ नहीं मिलता है, मजूरी मजूरी हाथ लगती। तो हम उसी बंदर के पड़ोसी ही हैं, बिल्कुल उसी के बिल्कुल साथ में रहने वाला हमारा मन है। तो कृष्ण हमको ऐसा बन देखकर, दया करके, उस भाव से हटाकर हमें वो युक्त बताते हैं, युक्ति से मुक्ति। कर्म तो करो लेकिन मुट्ठी बांध कर फल में लगो मत, नहीं तो छोड़ना तो पड़ेगा, जो भी फल मिला है छोड़ना पड़ेगा, डांग पड़ेगी, फांसा लगेगा तब छोड़ना पड़ेगा। तो उसके पहले तुम पकड़ो ऐसा क्यों कि उसमें ही फंस मरो, पकड़ो ही मत कि छोड़ना पड़े ऐसा मुसीबत। उपयोग कर लो लेकिन पकड़ो मत, शरीर का उपयोग कर लो, धन का उपयोग कर लो लेकिन ये धन मेरा है, शरीर मैं हूँ, बेटा मेरा है, पत्नी पर मेरा अधिकार है, पति पर मेरा अधिकार है। अरे भैया तेरा तो तेरे मन पर अधिकार नहीं तो तेरे शरीर पर भी तेरा अधिकार नहीं। शरीर का छपरा जब सफेद होता है तो तू इसको सफेद होने से रोक नहीं सकता, काला छपरा काले बाल में से सफेद होते तो तू रोक नहीं सकता है, और जवान में से बूढ़ा होता है तो रोक नहीं सकता है, और चिकने चपाटे चेहरे पर झुरियां पड़ने लगती है बुढ़ापे की तो रोक नहीं सकता है, अंत में मर जाता है तो तू उसको अमर नहीं बना सकता है। जब शरीर तेरा नहीं तो शरीर के संबंध तेरे कब तक, लेकिन न शरीर तेरा है न शरीर के संबंध तेरे पक्के हैं, लेकिन जिसकी सत्ता से तेरा और मेरा दिख रहा है वो वृत्ति, उस वृत्ति को जहां से प्रकट होते देखता है उसको देख ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। कितना सहज है कितना सरल है, अगर सहज और सरल नहीं होता तो युद्ध के मैदान में अर्जुन ऐसा नहीं कि साक्षात्कार करने के लिए आया, वो तो विषाद योग में था बेचारा, और गले तक डूबा था प्रॉब्लम में, गले तक प्रॉब्लम में डूबा हुआ अर्जुन जब गीता सुनकर मुक्ति का अनुभव करता है और संसार में भी सफल हो सकता है, तो तुम गले तक संसार में डूबे हो और गीता अगर अमल में आ जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है भाई। पहले के जमाने में राजा लोगों के पास ऐसी सुविधा नहीं थी जैसी आज के नेताओं के पास है, टेलीफोन टेलीविजन अखबारें ये वो, और सिस्टमेटिक काम होता है, सचिव है कलेक्टर है नायब कलेक्टर है फिर मामलेदार है फिर उसके नीचे और ऑफिसर है, और छंती वंती साफ होती खबर होती है, साहब को तो केवल सिग्नेचर करना होता है। पहले के जमाने में तो राजे महाराजे इतना इतना ध्यान देते थे और इतने इतने उनके पास साधन सीमित होते थे, छोटे मोटे साधन, कोई संदेशा भेजना है तो घोड़सवार को भेजो, टीपू सुल्तान का संदेशा ले जाना है तो घोड़सवार को भेजो, फलाने का संदेशा ले जाना है तो फलाने को भेजो, और संदेशा वाहक मर गया तो उसको पता चलते चलते तो कई दिन बीत जाते। लेकिन आज का आदमी तो है दिल्ली में क्या हुआ दो घंटे बाद में पता चल जाता, अरे 10 मिनट में बाद में ही सीएमओ को पता चल जाता कि दिल्ली में विशेष बात क्या हुई, उसी समय भी पता चल जाता है, अभी अभी दूरदर्शन को खबर मिली और पूरे भारत में फैल जाती। तो इस प्रकार के साधन सुविधाएं हैं, फिर भी आज के आदमी को रुचि नहीं आत्मज्ञान को पाने के लिए, इसलिए उसके लिए कठिन लग रहा है। उस जमाने के राजाओं के पास साधन सामग्री नहीं होने के बाद भी छोटे छोटे जासूस के साथ व्यक्तिगत मिलते थे, रामचंद्र जी एक छोटे जासूस के साथ व्यक्तिगत मिलते थे, छोटे छोटे सीआईडी के साथ व्यक्तिगत मिलते थे, और छोटे छोटे प्रॉब्लम को व्यक्तिगत सुनना पड़ता है, न्याय खाता भी अपने हाथ में तो भरण पोषण खाता भी अपने हाथ में, खोजी खाता भी अपने हाथ में तो खोजी खाता भी अपने हाथ में, सारे खाताओं का बोझा सिर पर होता था और उन खाताओं का दुरुपयोग नहीं करना, धर्म के अनुकूल चलना, और धर्म संकट आ जाए तो महापुरुषों के चरणों में जाना, महापुरुषों के आश्रम की सेवा सुश्रूषा करना और महापुरुषों के चित्त को प्रसन्न रखकर दुआ मांगते रहना कि ये लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे, और महापुरुषों के पास समय निकालकर स्वयं भी जाते तो अपनी पत्नियों को भी ले जाते थे सत्संग सुनने के लिए। ऐसा नहीं कि चुनाव के दिन में एक बात जी और आ गए महाराज हो गए तो फिर फुर्सत मिलेगी तो बाप जी का दर्शन करने जाऊंगा, ऐसा नहीं, वो तो चुनाव गुनाव होता नहीं था, और इतने डूबे हुए संसार के व्यवहार में फिर भी उन महान बुद्धिमान राजाओं ने ऐहिक व्यवहार करते हुए समाज को और अपने को आत्म अनुभूति के ऊंचे शिखर पर पाया। राजा जनक ने ऐहिक व्यवहार करते हुए आत्म साक्षात्कार कर लिया, राजा सत्यव्रत ने, राजा अश्वपति ने, और कई हो गए। इक्ष्वाकु कुल का राजा देखा कि सुबह से शाम, शाम से सुबह, जीवन की शाम हो जाती है और जीवन दाता मिले कब। इक्ष्वाकु कुल का राजा सत्यव्रत देखता है कि संसार के भोग भोगते भोगते तो जीवन समाप्त हो जाएगा, राजपाट यथा योग्य व्यक्तियों को संभालने के लिए देकर एकांत में तप करने को जाता है। सात्यायन मुनि पधारे,
मुनि ने कहा कि राजन तुम तप कर रहे हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इतना राज वैभव सुख सायदी छोड़कर तुम ध्यान भजन में ईश्वर को पाने को कटिबद्ध हुए, तुम वरदान मांग लो, जो तुम्हें कमी हो मांग लो, तुम्हारे राज्य में जो असुविधा हो वो चीज मांग लो, सुविधा आदि का आशीर्वाद। महाराज ये सब तो ठीक है, कितनी भी सुविधा मिलेगी कितनी भी असुविधा मिलेगी, आखिर तो ये तन पर सुविधा और असुविधा आकर चली जाएगी, और तन पर सुविधा असुविधा आकर चली जाएगी, वो तन भी सदा नहीं रहेगा, तन भी जल जाएगा। महाराज ये शरीर जल जाए उसके पहले मेरी आसक्ति जल जाए और मुझे मालिक परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, ऐसी प्रकार की। शाक्यन मुनि कहते हैं कि देखिए तुम ब्रह्म ज्ञान मांग रहे हो, ब्रह्म ज्ञान ऐसी दुर्लभ चीज है,